ओम शांति। बाबा ने हम सभी का क्या देखा? श्रेष्ठ भाग्य भिन्न भिन्न तरीकों से, मस्तक से भी, आंखों से भी, दिल से भी, हाथों से, पैरों से, होठों से, मुख से, नैनों से, सब से देखा। वो तो रिपीट करने की बात, आप पढ़ लेना, याद कर लेना। मस्तक पे क्या हो? आत्मा चमकती है ना, उसकी लाइट। आंखों में रूहानियत, मुख पर देवताओं की वाणी के लिए क्या प्रसिद्ध है? हीरे मोती निकलते थे मुख से। हाथों में कुछ और सर्व खजानों की प्राप्तियों से जो भाग्य बनता है ना, उसकी रेखाएं हाथ में होती हैं, सर्व खजानों की रेखाएं। और पैरों में एक शब्द बोला था जिसको अंडरलाइन करें, याद के हर कदम में। ऐसे ही नहीं कि हम चल रहे हैं और पदम मिल रहे हैं, याद के हर कदम में पदम। वो भाग्य तो है, लेकिन इसका अनुभव कब होना चाहिए? अब। इसका अनुभव अब होना चाहिए, विशेष रूप से ये गुड फीलिंग होनी चाहिए कि मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूं। इसमें चिंतन भी चाहिए, स्थिति भी चाहिए, प्राप्तियां भी चाहिए। झूठ मूठ तो नहीं कह सकते ना कि हम बहुत भाग्यवान हैं, बहुत खजानों से हमारे भंडारे भरे हों। बोल हमारे कैसे हो, जो बाबा ने लास्ट में निर्माण और निर्माण, निर्माण माना क्रिएट कर रहे हैं, हम रचना रच रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा महत्व है निर्माण स्थिति, निरंकारी स्थिति, मैंपन से मुक्त स्थिति। और बाबा के ये शब्द अंडरलाइन कर लें सभी, सेवा में रहने वाले विशेष, संगठनों में रहने वाले विशेष। पहले मैं उन पे नजर डाल रहा हूं, तीन बातें बताई थी ना, पुरुषार्थ से खाता जमा, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, और तीसरा निस्वार्थ। अंडरलाइन कर लें बाबा की बात, अगर संतुष्ट नहीं रहते, दुआएं नहीं मिलती, दुआएं नहीं मिलेंगी ना, कोई तंग होगा हमसे तो बद दुआएं देगा ना, जल्दी इनसे पीछा छूटे। तो पुण्य का खाता जमा नहीं होता। यदि मैंपन से सेवाएं की जाती हैं, मैंपन से कुछ भी दिया जाता है, कुछ देखकर मान की इच्छा रहती है, कुछ देखकर कुछ पाने की इच्छा रहती है, तो पुण्य का खाता जमा नहीं होता है। अंडरलाइन कर लें, सभी सेवाओं में तन मन धन भी लगाते हैं, और संगठन भी हैं, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, संतुष्ट करके दुआएं लेना, और मैंपन के त्याग से पुण्य का खाता जमा करना, इस पे बहुत ध्यान देंगे। बहुत गहरी बात थी, तुम परिवर्तक हो, ठीक है, बोलो आगे भाई, बोलो, परवश नहीं हो सकते। विचार करना है आज इस पर, किस किस के वश हो जाते हैं? दूसरों से ज्यादा अपने मन के वश, अपने संस्कारों के वश, जो भी ये चीज होती है स्वभाव संस्कार, अपनी इच्छाओं के वश हमें विचार करना है। हम परिवर्तक हैं, किसको बदलने वाले, विश्व को बदलने वाले हैं। छोटा काम है क्या अपने को बदलना है? भारी पड़ रहा है या नहीं? चले हैं विश्व को बदलने, लोग भी हंसते होंगे ना जब सुनते होंगे। तो इतना बड़ा काम हम सबको दे दिया गया है, तो हमें कैसा बनना पड़ेगा? परिवर्तक हैं तो परवश नहीं। कौन नहीं हो सकता परवश? जो बहुत शक्तिशाली हो, जो स्वराज्याधिकारी हो, जो स्वयं पर राज करते हो, जिसने स्वयं की कर्म इंद्रियों को वश कर लिया हो, जिसके पास ज्ञान का बहुत अच्छा बल हो, वो किसी के वश नहीं हो सकते। चलो अपने अपने परिवारों की बात सोचो, सब अपने अपने लौकिक की बात सोचो। आपके घर में एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत क्रोध करता है, सब उसके वश होते हैं, सब उसके वश हो जाते हैं, खुशी नष्ट हो जाती है। खुशी नष्ट हो गई माना परवश हो गए, शांति चली जाती है। किसी ने गुस्से से दो शब्द बोले, ज्यादा गुस्सा किया, हमें भी गुस्सा आ गया, तो हम परवश हो गए, उसके क्रोध के वश हो गए, हम भी उसका असर हो गया। किसी के कोई भी संस्कार हैं, उसके भी वश हो जाते हैं। कलयुग में इम्प्योरिटी के वाइब्रेशंस बहुत हैं, उसके वश हो जाते हैं। युवक बहुत नेट पे कुछ देखते हैं, वश हो जाते हैं। मैं हमेशा युवकों को एक बात कहता हूँ, बहुत एक केस अभी भी आया, वो कई केस आए लेकिन वो भारी था। युवक अच्छा, अच्छे घर का, पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि डिप्रेशन। मैं पूछता रहा ऐसे ही, मैं नेट की बात जरूर पूछता हूँ, मोबाइल पे कितना रहते हो? उसकी माँ ने बताया रात को 2 बजे तक। मैंने कहा तो तुम तो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकोगे। मैंने कहा मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, पर अगर बाहर आना है तो इसे छोड़ना पड़ेगा। अगर जीवन का सुख लेना है, जीवन में कुछ पाना है, कुछ करना है, तो ये छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा था कि वो मरने के लिए तैयार, पर नेट छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कोरोना वायरस भी मोबाइल से भी आएगा, और ये उनको ज्यादा वश करेगा जो नॉन वेज लेते हैं, जो पीते ज्यादा हैं। क्यों? पीने वालों का ब्रेन, उनके वाइब्रेशंस बहुत कमजोर, बहुत निगेटिव रहते हैं। जो नॉन वेज खा रहे उनके वाइब्रेशंस भी निगेटिव हैं, डर्टी हैं, उनके उन्हें पता नहीं ये खींचेंगे गंदे वायरस। अब तो एक वायरस आया है, अभी तो विनाश थोड़ा सा दूर है, न जाने क्या क्या वायरस आएंगे। इसलिए डरते हैं, डरना नहीं। कल भी मैंने कहा भारत के लोग बहुत बहादुर हैं। जब बॉम्बे में ताज पर अटैक हुआ ना टेररिस्ट, तो आसपास के मकान वाले अपनी छतों पर अपने बच्चों को कंधों पर खड़ा करके दिखा रहे थे, देखो क्या हो रहा, गोलियां चल रही हैं। मैंने कहा भाग नहीं रहे थे, छुप नहीं रहे थे। इस बहादुरी का परिचय देना है। डरना नहीं, डर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है इन चीजों को, सबको आकर्षित करता है। और डरने की इसलिए बात नहीं है कि ये वायरस हवा से नहीं फैलता, ये वस्तुओं से फैल रहा है, ऐसा नहीं ये भाग के आ जाएगा हमारे पास रातों रात, ऐसा कुछ नहीं है। डरना नहीं है, मैंने पहले भी यहाँ बताया था तुलसी की बूंद, ड्रॉप्स मिलती है ना, क्या कहते हैं उसको, तुलसी रस या कुछ नाम ऐसा ही है, हाँ तुलसी अर्थ, रोज 5 बूंद पी लो सेफ, बच्चों को पिलाओ, पानी चार्ज करके पिलाओ और अपने चारों ओर मास्टर सर्व शक्तिवान का आभा मंडल रोज क्रिएट करो। डरने की कोई बात नहीं, ना आपके परिवार पर आएगा, अपने घर के चारों ओर भी घेरा बना सकते हैं आप शक्तियों का, आपके न परिवार पर आएगा न आप पर आएगी। आगे चलकर सबको, दूसरों को बचाना है ना, ऐसी ऐसी चीजें भी आएंगी जो बहुत ही खतरनाक होंगी। ये सब लोग जो कर रहे थे ना, मैं तो ऐसे ही समझ गया ये जैविक हथियार बनाने के लिए कर रहे थे, मानवता के शत्रु हैं ना ये लोग, जिन्हें ये पता ही नहीं कि लोगों को कष्ट देना कितनी बुरी चीज है, कष्ट नहीं मिल गया। इसलिए हम ये ध्यान रखेंगे जो हम दूसरों को देते हैं वो वापिस आता है, कुछ भी बुरे शब्द भी दे रहे हैं बुरे ही तो सुनेंगे। अब किसी को गाली दो, दो चार बार वो सहन करेगा लेकिन आखिर तो सारा बदला लेगा ना, जो 10 बार गाली दी थी खट्टा ही कर देगा, पूरा हिसाब होगा या नहीं। सूक्ष्म चीजें भी, वाइब्रेशंस भी दूसरों के लिए, हम सोचते हैं ना ये व्यक्ति बहुत खराब है, हम निगेटिव एनर्जी दे रहे हैं उसको, वही आएगी। हमें बहुत ध्यान रखना है हम पुण्यों का खाता बढ़ाते चलें, सेवाओं में भी मैंपन के त्याग के बिना सेवा करें, और सबको प्रैक्टिस करनी है, सब सेवाओं में भी हैं मधुबन वाले, सब सेवा करें सारा दिन, रात को वो सेवा प्रभु अर्पण, पूरा हो गया, मैंने किया ये किया, आज इतना अच्छा किया, आज इतना पैसा दिया, आज यज्ञ में ये काम किया, नो अर्पित भूल जाएं, मैंपन बिल्कुल न हो। सब करेंगे जो भाई बहने बैठे हैं विदेश के भी, जो भी सेवा करें रात को बाबा को अर्पित, तुमने ही कराई तुमको ही वापिस। हम कब जानते थे क्या सेवा करना, मैं अपने बारे में सोचा करता हूँ, जो ज्ञान हम दे रहे हैं वो हमारे पास था क्या, जो बोलने की कला हमें मिली वो हमारे पास थी, जो अवसर हमें मिले वो हमारे पास थे, बिल्कुल नहीं। ये सब कहाँ से आए, ये सब ऊपर से आए हैं ना। मैं सोच रहा था, मेरे से कईयों ने पूछा इस बार, तुम्हें ये बाबा से पहले की क्लास कितने साल पहले मिली थी, मैंने कहा भाई मुझे याद तो नहीं है, पर हुआ ऐसा था कि इस हॉल में बाबा आते थे। मनोहरदाय ने बड़ी दादी को कहा कि सब लोग ऐसे, उन दिनों 6 बजे शुरू होता था प्रोग्राम, 6 बजे गुलजार दादी आ जाती थी, 6:30 बाबा आ गए, चलता था प्रोग्राम। तो मनोहरदाय ने कहा सब लोग ऐसे ही आके बैठते हैं, क्या क्या सोचते हैं, वाइब्रेशंस नहीं बनते। कोई अगर शाम को 4:30 से 5:30 क्लास कराए तो थोड़ा सबकी बुद्धि स्थिर हो, थोड़ा अच्छे वाइब्रेशंस हो तो अच्छा रहेगा। अब 4:30 का टाइम दिन का ऐसा है, कौन कराए, ये ऐसा है बिल्ली के गले में घंटी, कौन बांधे, सब रेस्ट करते हैं तो कोई भी दादी तो तैयार नहीं। तो आखिर मैं तो ज्यादा फेमस नहीं था क्लास कराने के लिए, मनोहर दादी ने मेरा नाम ले दिया, सूर्य कराएगा, दादी तो बहुत प्यार करती थी, क्लास कराते थे, थोड़ी थोड़ी यस हो गई। यहाँ उन दिनों 200 लोग आ रहे थे हर ग्रुप में, पानी की कमी थी तो क्लास शुरू हो गई, सबको अच्छी लगने लगी। पता नहीं कितने साल हो गए, 35 से ज्यादा तो हो ही गए हैं। तो ये किसने दिया अवसर, मैंने तो कुछ मांगा नहीं जीवन में, नथिंग, मैंने कभी किसी को नहीं कहा होगा मुझे क्लास दे दो, अब भी नहीं कहता। तो ये कौन कराता है, ऊपर वाला, मैं ऊपर वाला ही कह रहा हूं, हम तो ऊपर वाले को अच्छी तरह जान गए, तो मैंपन आने की कहीं गुंजाइश नहीं है। और भी हम देखते हैं, कई बार मैं अपनी बात सोचा करता हूं, मैंने क्लास कराई, मैं बहुत थका हुआ था, सिर भारी था, लोगों ने बहुत अच्छे अनुभव किए, मुझे बताया आज तो ये हो गया, मैं सोचता हूँ वाह प्रभु तेरी लीला। मैं तो वैसे भी थका हुआ था, पता नहीं क्या बोल के आ गया। कहाँ से होता है काम? ऊपर से। मनोहरदाय सुनाया करती थी, वो दिल्ली में रहती थी, एक ऑफिसर आता था, वो दादी का भक्त था। अब जहाँ रहते थे वहाँ लाइट नहीं थी, वो आता था रात को, मुझे दादी मनोहर दादी योग कराए। चलो भाई योग कराए, लाइट नहीं है तो लालटेन रख दी, सामने वो बैठ गया, दादी योग करा रही। दादी तो बड़ी रमणीक थी ना, और साफ दिल भी थी, कहा मुझे तो आ गई नींद, और उसे दिख रहा है दुर्गा देवी बैठी योग करा रही है। हंसाती थी मनोहर दादी अपनी बात, कहा देखो ये प्रभु लीला है, कोई ऐसे उछल कूद करता रहे मैं कर। और वो अति भावुक, बस दादी के पैर पड़ रहा है, आप दुर्गा देवी हो, और उधर दादी को नींद आ गई है रात को। तो मैंपन की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। पैसा, बाबा के बच्चे सेवाओं में लगा रहे हैं, क्या बाबा को जरूरत है? है? मैं कहानी सुनाया करता हूँ, लिखी गई है, मुझे सत्य भी लगती है। शंकराचार्य पहले वाले आदि शंकराचार्य, भिक्षा पर ही इनको लेना होता था सब कुछ, और दो घरों से ही लेना होता था, तीसरे में नहीं जाना है। गए एक झोपड़ी में, कहा माता भिक्षा दो। उसने कहा बेटा, सन्यासी शंकराचार्य छोटा सा था, 10-12 साल का, कहा मेरे घर में तो कुछ नहीं है। और आंसू आ गए उसको कि मैं एक सन्यासी को आज खाली हाथ लौटा रही हूँ अपने घर से, खराब बात है। अब सुगन मानते हैं ना, कोई कुछ मांगने आ गया और हम खाली हाथ लौटा दें। शंकराचार्य ने कहा नहीं, अंदर जाओ, देखो कुछ तो है। अब उसने सोचा कि सन्यासी कह रहा है, चलो देख लेती हूँ। गई अंदर तो एक आंवला रखा था, आंवला उठाकर ले आई के महाराज ये आंवला है, स्वीकार कर लो, मुझे पता इससे आपकी भूख तो नहीं मिटेगी। स्वीकार किया और शंकराचार्य वहीं ध्यान में बैठ गया और आह्वान किया, उस माता के आंगन में हीरो की बरसात हो गई। अब सोचो आप, एक सिद्ध पुरुष हीरो की बरसात करा सकता है तो परम पुरुष चाहिए क्या उसको? किसी का पैसा उसके हमारे, हम उसको देते हैं 10,000, 5,000, 100, 200, उसके लिए कुछ है क्या? लेकिन वो क्या रिसीव करता है हमसे, क्या स्वीकार करता है? हमारा प्यार और भावनाएं, उसका रिटर्न मिलता है। इसलिए बाबा ने कह दिया साकार में, साहूकार 1,000 दे, उन दिनों की बात है, और गरीब 1 रुपया, उन दिनों का 1 रुपया आज के 100 रुपए के बराबर है, इतना आप तुलना कर लो। गरीब 1 रुपया दे, साहूकार 1,000, साहूकार का 1 लाख हो गया आज, और गरीब के 100 रुपए, दोनों को बराबर भाग्य मिलेगा, क्योंकि बाबा उसके लाख या 100 को नहीं देखता, वो भावना और प्यार को देख रहा है। तो हम मैंपन कहीं भी न आने दें, क्लियर है ना ये बात? पुण्य जमा होता जाएगा, दूसरों का असर हम पर न हो, बड़ी बात है। मैं आपको बाबा का महावाक्य सुना दूं, नो इफेक्ट, इफेक्ट तो समझते हैं ना सभी, नो इफेक्ट, ये है परफेक्ट स्टेज। किसी भी चीज का कोई इफेक्ट कम्पन न हो, ये है परफेक्शन, संपूर्णता। अब देखो इफेक्ट तो सारा दिन होते हैं ना, सारा दिन। आपका बच्चा सो के उठ नहीं रहा, आपने चार बार उठाया, उसको स्कूल भेज रही है, नहीं उठ रहा, उसका भी इफेक्ट होगा ना, इरिटेशन होगा, चिड़चिड़ापन आएगा। आपने खाना बनाया है, खाने वालों को मजा नहीं आया, आप पर उसका भी इफेक्ट होगा, छोटी छोटी बातें। आपने कोई कार्य किया है, कार्य में थोड़ी टेंशन हुई है, उसका भी इफेक्ट आएगा। किसी ने आपको कुछ कहा है, उसका इफेक्ट आएगा। आजकल की परिस्थितियों को देखें, किसी के पति शराब पी रहे हैं, उसका भारी इफेक्ट आ रहा है। किसी की लड़की थोड़ी दुखी है, माँ बहुत दुखी हो रही है। हर चीज का इफेक्ट आ रहा है। क्यों? आत्मा कमजोर हो गई, सेंसिटिव। चाहे दूसरों के संस्कारों का इफेक्ट हो, चाहे काम क्रोध विकारों का इफेक्ट हो, चाहे दूसरे की बुरी दृष्टि का इफेक्ट हो, चाहे दूसरे के बुरे वचनों का इफेक्ट हो, मन कमजोर है। बुद्धि उसको तेजी से ग्रहण कर रही है। बुद्धि है धारण शक्ति, धारणा शक्ति। किसने बुरे वचन हमें बोल दिए, हमारी इंसल्ट कर ली, हमने उस इंसल्ट के शब्दों को बुद्धि में ले लिया, स्थिति बिगड़ गई, परवश हो गए ना। वो अपमान करने वाला व्यक्ति चला गया, शायद उसको पता भी ना हो मैं कुछ बुरा कर आया, यहाँ आपने अपनी स्थिति बिगाड़ ली। तो इम्पोर्टेंट चीज है हमें, देखो अपमान की बात के लिए बाबा की बात याद रखेंगे, जिनमें देह अभिमान ज्यादा होता है उन्हें ही अपमान की फीलिंग ज्यादा होती है। कई बार दूसरा व्यक्ति कुछ ज्यादा नहीं कहता, सुनने वाला अपने को ज्यादा अपमानित फील करता है। हम थोड़े लाइट हों, हल्के हों, जो आत्मा स्वमान में स्थित रहती है। सोचो, चलो अंदर चलो, जो आत्मा स्वमान में स्थित रहती है उसे किसी के सम्मान की आवश्यकता महसूस नहीं होती। जो आत्मा ईश्वरीय खजानों से भरपूर हो जाती है, उसे कोई मान दे, कोई प्यार दे, कोई सेवाओं का अवसर दे, ये भी महसूसता नहीं होती। तो स्वमान बहुत बड़ी चीज, स्वमान के महत्व को सभी ब्राह्मणों को समझ लेना चाहिए। स्वमान हमारी स्पिरिचुअल लेवल को बहुत ऊंचा उठा देता है। हम अपने स्वमान को बढ़ाएं, स्वमान माना हम बहुत ऊंचे हो गए, तो ये सभी बातें नीची हो जाएंगी। ऊंचाई पर रहने से नीचे की चीजें छोटी दिखती हैं ना, हमें बहुत छोटी दिखाई देंगी। पहली चीज, हम स्वमान को बढ़ाते चलें, हम सुखों को बढ़ाते चलें। कल था ना मुरली में, सुख शांति संपत्ति, जो सतयुग में भरपूर है, लेकिन उसका अनुभव वहां नहीं है। वहां हमें पता नहीं, हमारे पास बहुत संपदा है। कल तो बाबा कह रहा था, पहाड़ भी वहां सोने के होंगे। मुझे लगा प्रभु जी भी कहीं अतिशयोक्ति तो नहीं कर रहे, सोने के पहाड़। अच्छा, लेकिन हमें उसकी वैल्यू थोड़ा ही होगी। अब सारे ही पहाड़ सोने के हों, जैसे आज सारे पहाड़ पत्थर के हों, हमें लगता है क्या कुछ विशेष चीज है? सारे ही पहाड़ सोने के हों, ठीक है, कुछ नई खास बात नहीं होगी। हम भी यदि ईश्वरीय सुख से, कल बाबा ने शब्द बोले परम सुख, ईश्वरीय सुख, परमात्म सुख, इससे भरपूर होना है, इससे भरपूर होना है। कौन से सुखों से? नहीं, साधनों का सुख, खाना बहुत अच्छा मिल रहा है वो भी सुख है, सुख है। हम ये नहीं कह सकते वो सुख नहीं है, फेंको खाना, कपड़े अच्छे मिल रहे वो भी सुख है, रहने को अच्छा मिला वो भी सुख है, कार आपके पास अच्छी है वो भी सुख है, लेकिन इस सुख में हम अटक कर न रह जाएं, जो परमात्म सुख है उससे स्वयं को भरपूर करें, तो कोई अन्य दुख हमें छू नहीं सकेगा। इस पर सबको बहुत ध्यान देना है। शांति के लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, शांति के वातावरण में शांत रहना, ये तो कॉमन बात हो गई। जैसे मधुबन के वातावरण में अच्छा योग लगना बड़ी अच्छी बात है, लगना भी चाहिए और आपको आना भी नहीं, यहाँ आना ही चाहिए, लेकिन कईयों का यहाँ भी अच्छा नहीं लगता। भाई बहने भी होंगे आप में से जो कहते हैं योग ही नहीं लगता यहाँ तो। ऐसे तो कुछ लोग आ जाते हैं, लाख में से एक, लाख में एक ज्यादा नहीं, जो कहते हैं हमारे घर में हम थे सेंटर में बहुत अच्छा योग लगता था, यहाँ आए तो योग ही नहीं लग रहा। ये भी गति है ना कर्मों की। तो हम अपनी स्थिति को ऐसा बनाएं कि शांति हमारी नेचर बन जाए। सुख में रहना हमारा एक नेचुरल स्वभाव हो जाए। और संपदा तो हम जैसी किसी के पास नहीं है। बाबा ने कल ज्ञान की संपदा की चर्चा की, ज्ञान माना समझ, हर कर्म हर बोल समझदारी का, लोगों को लगे बड़े समझदार लोग हैं, अच्छा बोलते हैं, ऐसा ना लगे ज्ञानी तो हैं पर बोल तो पता नहीं कैसे हैं। समझदारी पूर्वक कर्म, बोल, संकल्प, व्यवहार, दूसरों के संबंध में आते हैं उनसे व्यवहार, तो हमारे पास खजाने भी बहुत हैं। फूल जितने होंगे दूसरों का असर कम होगा, अंडरलाइन कर लें, जो खाली हैं उन पर ही दूसरों का असर हो रहा, जो खाली हैं वही दूसरों की ओर प्यासी नजरों से देख रहे हैं, उन्हीं के अंदर एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हैं, ये हमें प्यार करें, ये हमें कुछ दें, ये हमें अवसर दें, ये हमें आगे बढ़ाएं, ये बदलें तो हम भी बदल जाएं। भाई इन लेट आने वालों को बैठाते जाओ, जरा आगे भेजो, ये बदलें तो हम भी बदल जाएं, ये साथ दें तो हमारा भी पुरुषार्थ अच्छा हो जाए, हमारी दीदी अच्छी हो तो हम भी बहुत सेवा करें, ये भिन्न भिन्न बातें आती है ना। अब दीदी कहाँ से अच्छी लाओगे, वो तो जैसी है ठीक है बेचारी, वही सेवा करनी है। मेरे पास दीदियों के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं, कोई जगह दीदियां कम पढ़ी लिखी, साधारण, मुझे लगता है वो मैंपन से मुक्त और सेवा जबरदस्त देखने वाली, और कई जगह बहने बहुत पढ़ी लिखी, बहुत प्लानिंग बुद्धि, बहुत अच्छे अच्छी तरह से कोर्स कराने वाली, लेकिन सेवा उतनी वृद्धि को नहीं पाती। मैं भी सोचता रहता हूं, पीछे मैं एक जगह गया, मैं यहाँ के सुनाया था, तब मैं गया था बड़े सेंटर में, मुझे कहा एक घंटे के लिए पास में, वहां भी चलो आधा घंटा ही है, मैंने कहा थोड़े से स्टूडेंट हैं चलो एक घंटे के लिए चले जाते हैं, कहा नहीं आधा दिन दे दो, हम तीन थे, मैंने कहा चलो अच्छा, बहने बेचारी कहती है आधा दिन दे देते हैं। मैं पहुंचा वहां, हॉल बन रहा था बहुत बड़ा, कितना बड़ा होगा, हमारे ओम शांति भवन जितनी चौड़ाई और लंबाई से और थोड़ी 30 फुट कर दो। भाई बहने बैठे, बहन जी मेरे पास बैठी थी अति भोली, बेचारी को स्पाइन का ऑपरेशन हो गया कमर का, आधा घंटा काम करती है तो आधा घंटा लेटना पड़ता है। मैंने हंसी से पूछा, बहन जी आपके स्टूडेंट हैं या उधार लाई हो, उधार माना भाई हम गए हैं तो इधर उधर से बहुत आ जाते हैं, कहा नहीं ये सब हमारे ही हैं, 2000 बैठे थे, हॉल खाली भी था शायद, में अभी तैयार नहीं हुआ था, मैं देखने लगा। मैंने पूछा फिर क्लास के बाद, कितनी गीता पाठशालाएं खोली हैं, 40 हैं, इनका और छोटे सेंटर 9 हैं, बहने 25 हैं हम। मैं तो वाह प्रभु तेरी लीला सोचता रहता हूँ कि संसार को किन के द्वारा तुम बदलवा रहा है। बहुत पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन सबको मिला के चल रही है, सबके गुणों का फायदा उठा रही, ये कला उसमें है। तो मैंपन का त्याग बहुत कुछ कराता है। मैं सोचा करता हूँ यज्ञ में विघन भी पड़ते हैं, अपने ही लोग विघन डालते हैं, ऊपर नीचे बहुत कुछ होता है, कोई नाराज होता है, कोई मदद करता है, कोई विघन डालता है। मैं सोचता हूँ, आप भी सोचते होंगे, बाबा तो इस संसार को स्वर्ग बनाकर अपने धाम चला जाएगा, किसने क्या लिया तुम जानो, नीचे वालों तुम जानो, वो तो एक से नहीं तो दूसरे से अपना स्वर्ग रच कर इस धरा पर चला जाएगा। बाबा एक बात कहते हैं, मैं आप सभी को ध्यान दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उसके बहुत सुंदर अनुभव आजकल हो रहे हैं। मुरली चिंतन मुझे रिकॉर्ड करना होता है तो तभी मैं मुरली पढ़ता हूँ, फट से 10 मिनट में पढ़ता हूँ और 8 मिनट में मुझे उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। मुझे कुछ नई चीजों की डीप रियलाइजेशन हुई। ये जो बाबा ने कल कहा उस पे सभी बहुत ध्यान देंगे, 5 स्वरूपों का अभ्यास। और मुरली, ये बात मैं तो बार बार कहता हूँ, आप में से कई करते होंगे, मुरली को इस नजर से सुने, इस दृष्टि से सुने कि बाबा मुझे क्या क्या याद दिला रहा है। कल भी कहा ना, कितनी बार राजाई पाई है, कितनी बार गवाई है। मैं सोच रहा था भगवान को तो एक चक्र ऐसा ही लगता होगा जैसे घड़ी घूम जाती है ना 24 घंटे में, कह रहे कल तो इन्हें राजाई दी थी, ये आज क्या हो गया इनको, कहता भी है ना बाबा। ये विश्व महाराजन थे, ये कंगाल बन गए, क्या हो गया बीच में, ये माया कहाँ से आ गई। बाबा का तो ऐसा ही लगता है ना, अनगिनत बार उसने ये खेल देखा है, बदलते हुए, विनाश होते हुए, स्थापना करते हुए, आत्माएं उससे अधिकार लेने आ रही हैं, कुछ छोड़ छोड़ के जा रही हैं। इधर ही आ जाओ, आप लोग ही आ जाओ, कुछ छोड़ छोड़ के जा रही हैं भगवान को, कोई संशय बुद्धि हो रहा है, कोई नशे में है, कोई परेशान है। मैंने कहा बाबा को थोड़ा ही कोई असर पड़ता होगा या पड़ता होगा, नथिंग, ये तो खेल ऐसे ही चलता रहता है, बार बार उसने देखा है। हम भी ऐसी स्थिति बनाए, ऐसा साक्षी भाव। इसलिए जो मैं और मेरा लंबे समय से गहरी जड़े जमा चुका है, 5000 साल का ही है ना, ये भी सतयुग में भी तो रहेगा ना, मेरा राज्य भले मैं पर नहीं होगा पर मेरा मैं है, तो शब्द तो है, एक कॉन्शियसनेस तो है, अहंकार नहीं है। इससे मुक्त होना और 5 स्वरूपों का व्यास बढ़ाना, ध्यान देंगे तो हम परिवर्तक हैं, ये भी हमारा स्वमान है, मैं विश्व परिवर्तक तक हूं। अभ्यास करेंगे सभी, मैं परम धाम से अवतरित हुई हूँ आत्मा इस देह में, कौन हूँ मैं, अवतार। जैसे बाबा ने अवतार लिया है, शिव बाबा ने, निराकार ने, इस संसार को बदलने के लिए। बाबा के बहुत अच्छे शब्द थे, कभी एक अवतार कमाल कर देता है, अगर तुम सब अवतार बन जाओ तो क्या हो जाएगा। तो मैं इस धरा पर अवतार हूँ, ये कॉन्शियसनेस बढ़ाएंगे आज से, मैं इस धरा पर अवतार हूँ, इस देह में आई हूँ मैं आत्मा संसार में शांति स्थापना के लिए, इस संसार से माया के साम्राज्य को नष्ट करने के लिए, इस संपूर्ण प्रकृति को पावन बनाने के लिए, मैं आत्मा आई हूँ भगवान को साथ देने के लिए। तो जिस काम के लिए हम आए हैं, हम शांति स्थापना के लिए आए हैं, तो क्या फायदा होगा? संसार की अशांति हमें अफेक्ट नहीं करेगी। मैं आई हूँ आत्मा संपूर्ण प्रकृति को पावन बनाने के लिए, आत्माओं को पावन बनाने के लिए, तो संसार की इम्प्योरिटी मुझे टच नहीं कर सकती। होगा नहीं? ये चिंतन सभी को बढ़ाना है। मैं आत्मा ने अवतार लिया है सबके दुख हरने के लिए, तो संसार का कोई दुख मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। अपने जरा स्पिरिचुअल लेवल को ऊंचा उठा दो सभी। रूहानी अपना जो लेवल है, स्तर है, हमारी जो ऊंचाई है, चलें उसमें, उठाएं अपने को बहुत ऊंचा। ये मेरा छूट जाएगा। मैं विश्व कल्याण के लिए आत्मा अवतरित हुई हूँ। मैं किसी का कल्याण नहीं कर सकती। किसके लिए ईर्ष्या रखें, किसको गिराएं, किससे वैर लें, हमें तो विश्व कल्याण करना है। तो ये चिंतन योग शक्ति के साथ, ये स्वमान का चिंतन परमावश्यक है परवश स्थिति से बचने के लिए। तो हम शक्तिशाली हैं, वाइब्रेशंस हमें दूसरों को देने हैं, किसी के लेने नहीं है। कोई रो रहा है, माताजी भी रोने लगी फट से, पता नहीं वो क्यों रो रहा है, रो रहा था, हम भी रोने लगे। माताएं कर देती है ना, उसके वाइब्रेशंस आ गए ना, नो, रो रहे हैं, वाइब्रेशंस देने हैं। मैंने सुनाई थी पीछे सच्ची घटना, मुजफ्फरनगर जहाँ हमारा नेटिव प्लेस है, एक वकील, अभी मैं मिला उनसे, यंग लड़का 25 साल का जो LLB कर रहा था, अचानक बाइक से एक्सीडेंट हुआ, मर गया। अचानक समाचार आया, फाइनल ईयर, बस 2 मास रहे थे स्टडी के। कितनी बड़ी घटना होती, एक ही लड़का था, एक लड़का, और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस माँ ने अपनी स्थिति को अति सुंदर रखा, बाप ने भी। चिता वो जा रही है, अर्थी, कितना भावुक माहौल हो जाता उस टाइम, सब रो रहे हैं और ये सबको सांत्वना दे रहे हैं। जो हो गया उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, ये माँ कह रही है सबको। लोग उसके पास रोते हुए आ रहे हैं और उसके पास आकर शांत हो रहे हैं। ये चमत्कारिक अनुभव थे। हमारी एक बहन थी वहां, उसने मुझे सुनाया अगले दिन कि देखो इनकी स्थिति कितनी जबरदस्त है। अब मैं गया था, मैं जानता हूं कि थोड़ा इफेक्ट मनुष्य को बाद में होता है। मैंने उन्हें और थोड़ा सा बल भरा, याद तो आती है ना, उसके लिए तो सब कुछ किया था। तो मेरे से पूछा, भाई अब मैं वकालत क्यों करूं, झूठा धंधा है वकालत का, पाप क्यों करूं। मैंने भी उसे कहा छोड़ दो और कुछ काम कर लो अब, क्यों किसके लिए करें। तो हमें वाइब्रेशंस देने हैं, हम परिवर्तक हैं, हम क्रिएटर हैं। छोटा सा अनुभव सुना दूं, जब ज्ञान सरोवर बना तो बहुत सारे विदेशी ज्ञान सरोवर नहीं रहना चाहते थे, पांडव रहेंगे, क्यों, यहाँ वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं, यहाँ बाबा मामा ने दादियों ने तपस्या की है, यहाँ योग अच्छा लगता है, मजा आ जाता है, यहीं रहेंगे। हम सुनते थे, बात तो उनकी ठीक है, हम भी यहीं रहे थे 28 साल, छोड़ना नहीं चाहता था कोई मधुबन को। लेकिन मुझे एक बात याद रही और वही मैंने उनको कहनी शुरू की। बना बनाया खाना खा के खुश होना तो सभी पसंद करते हैं, लेकिन बनाना भी तो किसी को पड़ता है। अपने को क्रिएटर मान लो कि कुछ आत्माओं ने मधुबन के वाइब्रेशंस को सर्वश्रेष्ठ बनाया है, तो हम ज्ञान सरोवर के वाइब्रेशंस को बहुत अलौकिक बनाएंगे, ताकि लोग ये कहने लगे अब हम ज्ञान सरोवर में रहेंगे, शांतिवन में नहीं। वो यही हो गया था, फिर शांतिवन में यही काम करना पड़ा। तो हम क्रिएटर हैं, हैं या नहीं, संसार को बदलने वाले, इसके वाइब्रेशंस को बदलने वाले, हम परवश हो नहीं सकते। हमें दुखियों के दुख हरने हैं, हमें रोतों को हंसाना है, हमें परेशान मनुष्यों को पुनः शांत करना है, हम परवश नहीं हो सकते। चिंतन, सब चिंतन करेंगे इन चीजों का, क्योंकि आने वाला समय इससे अच्छा होगा या थोड़ा बुरा? थोड़ा नहीं, ये खेल बदलेगा, युग परिवर्तन होगा, धरती बदलेगी, आकाश बदलेगा, हवा बदलेगी, पानी बदलेगा, चांद तारे बदलेंगे। बदलेंगे या नहीं, किसके लिए? तो थोड़ा बहुत कष्ट हमें भी हो जाएगा, लेकिन हम इन सब को वाइब्रेशंस देने वाली, ये प्रकृति बदलेगी। और वैज्ञानिक भी कहते रहे, मनुष्य ने प्रकृति का विध्वंस किया है, प्रकृति बदला लेगी। तो वो समय आ गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लोगों की ऐसी विपरीत बुद्धि हो जाएगी, मारो 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 मारो। दिल्ली का सुना आप लोगों ने? मैं तो न्यूज नहीं सुनता, एक भाई आया दिल्ली का, उसने सुना चार पांच दिन पहले। ऐसी भगदड़ हुई दिल्ली में, आ गए हैं, मार रहे हैं। कौन आ गया और कौन मार रहा? एक भी व्यक्ति नहीं मरा है सारे दिन, और सारी दिल्ली कहते दौड़ती रही। डर हो गया, लोगों ने दुकानें बंद कर दी, घर के दरवाजे बंद कर दिए, लोग वहीं के वहीं खड़े हो गए, मारने आ रहे लोग, ये वो। लोगों ने अपने घरों से भाले तलवारें निकाल ली, कोई मरा ही नहीं, कोई आया ही नहीं था, अफवाह। तो सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा, भाई ये सोशल मीडिया है, इसको जरा ठीक करना ही पड़ेगा। कुछ भी कोई लिख देता है, वहां ये कर दिया, वहां ये कर दिया, इतनों को जला दिया जिंदा, कोई भी नहीं जला। हम सभी को पावरफुल होना है, पावरफुल होना है। इसलिए अपना सम्मान, अपना योग अभ्यास, अपनी प्योरिटी, वो तीन बातें, उस पर तो चर्चा फिर करेंगे, धर्म, राज और संपदा सारी भविष्य की, इस पे फिर चर्चा करेंगे। धर्म कौन सा था? पवित्रता। राज तो स्वराज और एक राज, बाबा ने कहा दो राज न हो। कौन से दो? माया और बाबा का, दोनों राज चलते रहते हैं ना हमारे ऊपर भी, परिवारों में भी, उस पर फिर चर्चा करेंगे। तो हम सभी आज इस संकल्प को पक्का कर दें, हम अवतार हैं, देने वाले परिवर्तक हैं, किसी चीज का असर हो नहीं सकता, हम परवश हो नहीं सकते, हम तो परवश आत्माओं को मुक्त करने वाले हैं। इसीलिए हमें ज्ञान मिला है, इसीलिए हमें योग की शक्ति प्राप्त हुई है, इसीलिए हमें बाबा से वरदान प्राप्त हुए हैं। ओम शांति।
प्रभु का ध्यान।